ओम शांति।
जो थोड़ा पीछे बैठे हैं, आगे सीट खाली है, आगे आ जाएंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। ओम शांति। संगम युग पर हम सभी ब्राह्मण बच्चों का एक ही लक्ष्य है, और वो है ब्रह्मा बाप समान बनना। तो ब्रह्मा बाप समान हम कैसे बने? ब्रह्मा शब्द से जुड़ी हुई हम पांच बातें आपके सामने रखेंगे। वो पांच बातें जो ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार कहो, फाउंडेशन कहो, नींव कहो, अगर वो पांच बातें हैं तो समझो हम ब्राह्मण हैं। यदि वो पांच बातें नहीं तो समझो हम ब्राह्मण तो बन गए लेकिन हाफ कास्ट ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मणों की निशानी वो पांच बात, और वही है ब्रह्मा बाप समान बनने का आधार। तो उसमें से पहली बात जो आपको भूले नहीं, इसलिए ब्रह्मा शब्द से ही वो जुड़े हुए बातें हैं। पहली बात ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है ना? हम बहुत ऊंचा ऊंचा प्लान बनाते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन हम देखें जो बाबा की पहली पहली आज्ञा है, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त माना अमृत वेला, वो अमृत वेला हम पूरी यथार्थ तरीके से अमृत वेले योग का संपूर्ण सुख लेते हैं। अब कई बार कई लोगों के अंदर एक प्रश्न होता है कि हम चाहते तो हैं अमृत वेले का पूरा सुख लें, लेकिन अमृत वेले नींद खुलती नहीं, या नींद खुलती है तो भारी भारीपन लगता है, फिर नींद आ जाती है। कई कहते हैं कि अमृत वेला नींद खुले कैसे, रात में ही नींद नहीं आती सोने के समय, माना जब सोने जाते हैं तो रात में नींद नहीं आती, और जब अमृत वेला होता है तो। जो भी अमृत वेले योग में शिकायत, कई कहते हैं अच्छा नींद आती है मुझे रात में, खराब स्वप्न आते हैं, कई कहते हैं हम तो गुड मॉर्निंग करके फिर सो जाते हैं, कई कहते हैं कि उठ तो जाते हैं लेकिन इतना भारीपन लगता है, नींद आती है, झुटका आता है, उबासी आता है, आदि आदि। तो मुझे याद है यह मुरली मेरे सामने ही ओम शांति भवन में चली थी, मुरली का डेट है 16/11/95। उसमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर बाबा ने एक शब्दों में दिया, यदि आप सचमुच अमृत वेले योग का संपूर्ण सुख लेना चाहते हैं तो बाबा ने बताया कि रात में जब सोने जाते हो, कमरे में सोने जाते हो, तो कभी भी आपस में संसार समाचार की लेन देन नहीं करना। ये बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराई इस बात के ऊपर। फिर बाबा हमारे मन की तो बात जानते हैं, बाबा ने कहा कई बच्चे कहते हैं बाबा वही तो समय होता है जब आपस में इकट्ठा होते हैं, और हम व्यर्थ बातें नहीं करते, हम तो सेवा के बारे में बातें करते हैं। तो बाबा ने यहां तक कह दी कि अगर सेवा के बारे में भी बातें करनी है तो भी बिस्तर पर बैठकर नहीं, कमरे से बाहर निकलकर दो सब बात कर लो। बिस्तर पर जाते हो तो केवल बाबा से ही बातें करनी है। अब आप सोचो जब बाबा ने यहां तक कह दी, और यदि हम आपस में इधर उधर की बातें करते करते सोते हैं, न्यूज सुनते सुनते सोते हैं, संसार समाचार की लेन देन करते सोते, तो अमृत वेले अमृत बेला उठ सकेंगे? तो बाबा ने कहा या तो लो बातों का सुख और या तो लो बाप का अमृत वेले का सुख, बाप की याद का सुख। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम सचमुच ये चाहते हैं कि अमृत वेला हमारा पूरी तरह से जागृत हो और सुख मिले, तो पहली बात रात में सोने के पहले अच्छी तरह से बाबा को याद करना है। और ये बातें हम साकार मुरलियों में सुनते रहते हैं। बाबा ने भिन्न भिन्न तरीका बताया है, बाबा ने कभी कहा कि जब बिस्तर पर जाते हो तो सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते देखते कि वाह बाबा आप हमें इस तरह, मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बन रहा हूँ। फिर बाबा ने कभी कहा सुदर्शन चक्र फिराते फिराते सो जाओ, कभी बाबा ने कहा आधा घंटा योग में बैठो फिर सो। माना कहने का भाव ये है कि सारे दिन का चार जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ अपने मन बुद्धि को खाली करके सोना है, बोझ लेकर के नहीं। अगर बोझ लेकर के सोएंगे तो अमृत वेला उठ पाएंगे? नहीं उठ पाएंगे। आप सभी को याद होगा दो तीन वर्ष पहले बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा कि जब रात में सोने के पहले तुम बाबा को याद करते हो तो पता है क्या फायदा होता है? तुरंत एक तो बाबा ने कहा नींद भी अच्छी आएगी, दूसरी बात बहुत बड़ी बात बाबा ने बोला, बाबा ने कहा कि धर्मराजपुरी के सजाओं से बच जाएंगे। अगर आपने ये आदत डाल के रखा है, ये नियम बना के रखा है, रोज बाबा को समाचार सुनाकर फिर सुनेगा। तो ये एक मुरली में नहीं, दो तीन मुरलियों में बोला ये बात। तो एक बार एक टीचर बहन ने गुलजार दादी से प्रश्न किया कि दादी सारे दिन का समाचार बाबा को सुना दें और फिर इतनी बड़ी बात की धर्मराजपुरी के सजाओं से मुक्त, इसका थोड़ा सा आप स्पष्टीकरण करें। तो दादी ने कहा देखो बाबा को सुनाने का मतलब ये कि अंदर से रिलाइज हो, ऐसे नहीं कि रोज हम गलती करते रहें, रोज ही सुनाते रहें कि हाँ बाबा को सुनाया और खत्म। अंदर में रिलाइज हो कि बाबा ये मुझसे नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, अब मैं आगे से प्रतिज्ञा करता हूं कि दोबारा ये गलती नहीं होगा, ठीक है ना? तब समझो आपका मन भी शांत हो जाएगा, हल्का हो जाएगा और जो बाबा ने कहा धर्मराजपुरी के सजाओं से बच जाएंगे। तो अमृत वेला चाहते हैं अच्छा हो तो इसके पहले रात्रि सोने का समय वो हम अच्छा करें, माना अच्छे से बाबा को याद करके फिर सोएं, ठीक है? अब अमृत वेला होता है तो अमृत वेला जैसे आपकी आंख खुलती है, तो आंख खुलते ही बाबा ने कहा क्या करो? गुड मॉर्निंग करो। और जब हम बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे तो बाबा देखो माताओं को अनुभव होगा कि सुबह सुबह उठते ही आपके बच्चे आपके पास आवे प्रणाम करें तो आप क्या करेंगे? उनको आशीर्वाद देंगे ना? तो ऑटोमेटिक देखो कितनी बाबा से हम प्यार से गुड मॉर्निंग करेंगे तो बाबा की दिल से दुआएं निकलेगी ना, आशीर्वाद निकलेगा ना। एक बार एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि तुम बच्चे गुड मॉर्निंग करो या ना करो लेकिन मैं तो जरूर करता हूं। आप सोचो तो बाबा से गुड मॉर्निंग और फिर आप फील करो कि बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे, और फिर जो वरदान लेना चाहो वो वरदान ले लो। अच्छा, फिर उसके बाद कई बार ये होता है ना कि हमारी नींद खुलती तो है लेकिन हम घड़ी देखते हैं, अरे अभी तो 5 मिनट बाकी है, थोड़ा 5 मिनट और वो 5 मिनट क्या करता है, सीधा 5 बजे नींद। हम सोचे थे कि अरे तो 5 मिनट बाद उठने के लिए मैंने सोचा है तो 5 बज गया। और फिर दूसरा ये आता है ना कि अरे अभी बाजू वाला भी तो सोया हुआ है, हम ही इतना क्या है बाबा भी। देखो माया कितने रायल संकल्प लाती है, वो ये संकल्प नहीं लाती कि अमृत वेला नहीं करना, क्योंकि हम ज्ञानी बच्चे हैं ना, हम समझ जाएंगे। वो देखो उसके रायल संकल्प क्या है, उस समय संकल्प आएगा बाबा भी तो कहते हैं ना तुम सहज राज योगी हो, हम कोई हठ योगी थोड़ी है, कोई हाल में जाए तभी योग लगेगा, कहीं भी योग कर लो, बिस्तर पर भी तो बैठ के योग कर सकते हैं, बाबा ने हमें, बाबा ने कहा है ना लेटे लेटे याद। अब वो सब हम भूल जाते हैं कि किस संदर्भ में बाबा ने कहा है, भाई आप बहुत बीमार हो बिस्तर से नहीं उठ सकते हो। मुझे याद है कि बड़ी दादी तो यहां तक कहती थी कि अगर आप बीमार भी हो और हाल में आकर के योग करते हो तो सुबह सुबह की जो हवा है, उस समय की प्रकृति है, वो तन और मन दोनों को स्वस्थ प्रदान करता है। एक बार मनोहर दादी सुना रही थी कि ब्रह्मा बाबा को एक डॉक्टर ने बोला कि दादियों को बोला कि बाबा को कहो थोड़ा तबीयत के अनुसार 2-4 दिन बाबा अमृत वेला योग कराने नहीं आवे, रेस्ट करे। तो दादियां गई बाबा के पास कि बाबा आपको डॉक्टर ने सख्त मना किया है कि अभी आज आपकी तबीयत नहीं ठीक है ना, आप 2-3 दिन रेस्ट करो और हम लोग योग कर लेंगे। बाबा ने मुस्कुराए, बाबा ने कहा क्या कहा बच्ची, कहा बाबा आप 2-3 दिन रेस्ट करिए और हम लोग योग कर लेंगे। तो बाबा ने कहा बच्ची ये बताओ, सुप्रीम डॉक्टर जो रूहानी डॉक्टर है वो बोलता है रोज अमृत वेला योग करो, जिस्मानी डॉक्टर बोलता है सोए रहो, तो मैं किस डॉक्टर की बात मानूं, रूहानी डॉक्टर की बात मानूं या जिस्मानी डॉक्टर की बात मानूं। तो दादी ने कहा बाबा आप रूहानी डॉक्टर की बात माने लेकिन 2 दिन के लिए जिस्मानी डॉक्टर की भी बात मान लीजिए। तो बाबा ने देखा ये बच्चे पीछे ही पड़े, तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है बच्ची सोचेगी। फिर दूसरे दिन दादी ने देखा कि बाबा रजाई वजाई ओढ़े आ गए। तो हम कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, तो ये बातें तो हम पहले करें और बातें तो दूर रही, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं जो बाबा की बनाई हुई दिनचर्या है, और इसमें संकल्प की बात होती है। अगर आपको रात में सोने के समय ये संकल्प आया कि आज सारा दिन तो हम बहुत बिजी रहे, कल तो अमृत वेला नहीं उठ पाएंगे, तो आप नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि आपने अपने मन बुद्धि को प्लानिंग दे दिया कि नहीं उठ पाएंगे ना। और यदि आपने ये सोच के रखा नहीं अमृत वेला भगवान से मिलन की वेला मैं जरूर उठूंगा, तो आप उठ जाएंगे। अब कई बार कई लोग ये कहते हैं कि मुझे रात में ड्यूटी होती है, सेवा होता है, सेवा के कारण जागना पड़ता है। तो एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये भी कहा कि किसी ने कहा बाबा मुझे तो 12 बजे तक जागना पड़ता है, अमृत वेला मिस होगा फिर। बाबा ने कहा ठीक है 12 बजे के बजाय 11 बजे सो जाओ, 1 घंटा छोड़ दो, लेकिन अमृत वेला ही नहीं करोगे तो सेवा क्या करोगे। अच्छा, और अगर अंदर में संकल्प है, दृढ़ता है, तो आप कितने बजे भी सो, मुझे याद है कि मैं मधुबन में, मैं एक साल मधुबन में रहा 94 से 95 तक। तो उस समय हमने यही लक्ष्य रखा कि मुझे एक दिन भी अमृत वेले का योग मिस नहीं करना है। और आज मुझे 24 वर्ष हो गए, सचमुच एक दिन भी अमृत वेले का योग मिस नहीं। और ये मैं बाबा का एहसान मानता हूं, बाबा की हम प्रैक्टिकल मदद मानता हूं। कैसे? क्योंकि ऐसी बातें हैं, जैसे हम शांतिवन बाबा से मिलने जाते हैं तो 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, देर से पहुंचते हैं, फिर भी जो हमने संकल्प कर लिया, अगर दृढ़तापूर्ण संकल्प करते हैं तो बाबा जैसे कि बंध जाता है उसे पूरा करने के लिए। नेचुरल हमारी 3:30 बजे नींद खुल जाती है, कितने बजे भी सोएं, हमारी मेहनत नहीं होती फिर उसमें, उत्साह जैसे कि बाबा से वरदान मिल जाता है। मुझे याद है जब ज्ञान सरोवर की बाउंड्री बन रही थी तो उस समय बड़ी दादी ने कहा कि जब तक बाउंड्री बने तब तक 10-10 ज्ञान सरोवर निवासी चारों तरफ नाइट पेट्रोलिंग करेंगे ज्ञान सरोवर के चारों ओर। तो हर सप्ताह सबकी ड्यूटी लगती थी, एक सप्ताह में हमारी भी ड्यूटी आती थी, उसमें 10 लोग होते थे, रात्रि 10 बजे से सुबह 3 बजे तक। तो रात्रि 10, आपने ज्ञान सरोवर देखा है कैसे नीचे ऊपर जमीन, अब रात्रि 10 बजे से सुबह 3 बजे तक आप चक्कर लगाएंगे तो उसके बाद 3 बजे सोने जाएंगे तो कितने बजे उठेंगे? सब 3 बजे सोने जाते थे, मैं भी जाता था, लेकिन मैं बाबा को कहता था, बाबा हम रात भर तो अभी चक्कर लगाया हूं और आपको पता है ना कि अमृत वेला ये आपकी जवाबदारी है, मैं सोने जा रहा हूं और ठीक 3:45 पर मुझे जगा देना क्योंकि 4 बजे से योग कराना है। तो मैं घड़ी देखता था, जब मेरी नींद खुलती थी ना 3 से 3:45 मिनट में ऐसा नींद होता था जैसे मैं रात भर सो के उठ रहा हूं एकदम। जब 3:45 पर नींद खुलती थी ऐसा लग रहा बिल्कुल फ्रेश। अब ये किसकी कमाल है? मैं होता तो सोया ही रहता है? अगर मैं होता तो सोया ही रहता ना 7 बजे तक, लेकिन जो बाबा को संकल्प दे दिया तो बाबा ने बिल्कुल फ्रेश नींद से जगाया। तो हम ये बहाना छोड़ दे कि रात में हम देर से सोते हैं या ये कारण है वो कारण है, कोई भी कारण नहीं, जहां लगन है, जहां चाह है और बाबा को जहां समर्पित कर दिया है तो बाबा जैसे कि वो बात पूरी करने के लिए बंध जाता है। नहीं तो अमृत वेला क्या होता है, रात भर आपको नींद नहीं आएगी, सुबह अच्छे से नींद आएगी, हाँ अच्छे से, उस समय आपको ये लगेगा अरे रोज तो उठते हैं एक दिन, आज एक दिन है। तो ऐसा नहीं, बाबा कहते मैं उस समय वरदान देने आता हूं तो माया भी क्या करने आती है, सुलाने आ जाती है। कई बार आपने मुरली में सुना होगा कि मैं हरेक के पास जाता हूं, हरेक को जगाता भी हूं, वो जग करके, हम जग करके गुड कहते ना, हम तो गुड मॉर्निंग करके फिर सो गए। अरे गुड मॉर्निंग करके सोने का थोड़ी होता है उसके बाद। आप सोचो भगवान भाग्य विधाता हमारे पास आवे और हमें जगा भी दे और फिर भी हम सो जाएं, तो वो क्या करेगा? फिर भाग्य विधाता आकर के हमें देख करके चला जाता है। और यदि हम उठ करके बैठते हैं तो बाबा ने क्या कहा है, उस समय मैं भोला नाथ बन करके बैठता हूं, जो चाहो, जो प्राप्तियां लेना चाहो, जो वरदान लेना चाहो, जो शक्ति भरना चाहो, भोलानाथ बनकर के भरपूर करता है। अब हम देखें अमृत वेला हम अपने आप को भरपूर करते हैं या क्या करते हैं। तो ठीक है, पहला क्या रखेंगे यार, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात अमृत वेले योग का हमें संपूर्ण सुख लेना है। और फिर जब अमृत वेला योग करते हैं तो उसको कोई ना कोई लक्ष्य लेकर के बैठे। अगर हम ऐसे बैठते हैं ना तो ऐसे ही टाइम चला जाता है। हमें करना क्या है, एक घंटा योग में बैठना है तो क्या उस समय अनुभव करना है। जैसे आप 4 से 4:45 योग में बैठते हैं, भाई हम 15 मिनट आत्म अभिमानी स्थिति अलग अलग अभ्यास करेंगे, देह से न्यारे होने का अलग अलग अभ्यास करेंगे, फिर 15 मिनट हम फरिश्ते स्वरूप का अलग अलग अभ्यास करेंगे, फिर 15 मिनट हम परम धाम में बीज रूप स्थिति में स्थित होंगे। ऐसे कुछ न कुछ निश्चित करो हमें करना क्या है उस समय, और संपूर्ण जागृत होकर के। तो पहली बात ये संकल्प रहे, और जब हम दृढ़तापूर्ण संकल्प करते हैं तो बाबा भी मदद करता है। तो आज से ही न केवल हमें सुनना है, लेकिन क्लास के बाद बाबा के कमरे में जाना और बाबा को बताना कि अभी किसी भी कारण से मिस हुआ सो मिस हुआ, लेकिन आज से हमें अमृत वेला योग का संपूर्ण सुख लेना, ये आपकी जवाबदारी है, आपको उठाना और करना नहीं। और हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि जो बाबा ने कहा है कि सोने के पहले अच्छी तरीके से बाबा को याद करके अपने मन बुद्धि को बिल्कुल खाली करके बाबा की याद की गोदी में सोना। दूसरी बात है ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्मा ज्ञान अर्थात मुरली, रोज की मुरली सुनना। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ही, एक बार ओम शांति भवन की बात है, बाबा ने एक प्रश्न किया कि ब्रह्मा बाप ही मुरलीधर क्यों बनता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय मुरली थी, इसलिए ब्रह्मा बाप मुरलीधर। हम कहें कि बाबा से हमारा बहुत प्यार है लेकिन मुरली सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो ये प्यार है? तो मुरली की इतनी लगन हो, देखो ये मुरली सुनकर के ही क्या लेखराज से ब्रह्मा बन गए, मुरली के आधार से ही ना। मुरली किसने कितना पालन किया, ओम राधे से मम्मा बन गई, किस आधार से, मुरली। दीदी दादी बाबा मम्मा जिसको भी जिसकी भी हम हिस्ट्री सुनते हैं उनका मुरली से प्यार देखो, तो मुरली से प्यार माना बाबा से प्यार। अच्छा, मुरली हमें सबसे पहले तो याद रहे, और आज एक बहुत सुंदर आपको विधि बताते हैं, मुरली आपको भूल नहीं सकती, और जो मैं खुद करता हूं। आप वैसे हम मीठे बच्चे धारणा सार वरदान स्लोगन लिखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुरली के बीच से भी हम खुद मेहनत करें, और ज्यादा नहीं, जैसे कि जितना हमसे हो सके। तो आजकल मैं क्या करता हूँ, मुरली से मैं 7 सूत्र निकालता हूँ, हेडिंग आज की मुरली से स्व उन्नति के लिए 7 सूत्रीय कार्यक्रम, 7 सूत्र। तो पहला सूत्र है? आपको जहां मीठे बच्चे धारणा सार वरदान स्लोगन या मुरली के बीच से जो पॉइंट आपके दिल को छू जाए, लग जाए, आपके नशे को खुशी को बढ़ा दे, ईश्वरी महावाक्य उसमें लिख दीजिए। दूसरा सूत्र आज की मुरली से स्वमान, वरदान स्वमान ही होता है, तो चाहे वरदान से या मुरली के बीच से, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो हम लिख रहे हैं ये केवल लिखने तक डायरी तक नहीं, लेकिन आज सारा दिन बातें तो बहुत होती, सामान बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन जिस सामान में हमें सारा दिन रहना है, ठीक है ना, जो हमें करना है सारा दिन वो, तो आज की मुरली से सामान। फिर तीसरी बात, आज की मुरली से योगाभ्यास। योग के संदर्भ में बहुत सारी पॉइंट्स आपको मिलेंगी, लेकिन हम एक ज्यादा विस्तार में ना जाकर के एक पॉइंट जिसको हम चलते फिरते उठते बैठते हमें वो योग अभ्यास करना है, तो आज की मुरली से योगाभ्यास। तीसरी बात, आज कितनी बात हो गई, चौथी बात आज की मुरली से धारणा। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हमें एक बात ऐसा लेना है जो गांठ बांध, आज सारा दिन कुछ भी हो जाए ये मुझे करना ही है। तो चौथी बात आज की मुरली से धारणा। पांचवी बात बहुत इंपॉर्टेंट, चिंतन। आज की मुरली से हमने बहुत सारी बातें होती, एक बात लेकर के उसके ऊपर चिंतन कीजिए, और हो सके तो लिख लो। चिंतन करके जब हम लिख लेते हैं तो वो चीज हमारी अपनी बन जाती, वो फिर कभी भूलता नहीं है। और सातवीं बात, आज की मुरली से स्वचेकिंग, चार्ट। ये छह बातें हमारा सहज हो है, इसको चार्ट के तरीके से चेक करना। तो कई बार हम चार्ट लिखते लिखते अरे वही बातें तो रोज होती हैं, बोर हो जाते हैं। तो अगर आप रोज की मुरली से चार्ट बना करके लिखेंगे तो रोज नया नया निकलेगा ना रोज की मुरली से, तो आप कभी बोर नहीं होंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब चूंकि आपने खुद मेहनत करके मुरली के बीच से ये सात सूत्र निकाले हैं, छह, अच्छा सातवां बात आज की मुरली से सेवा के संदर्भ में, ये बात सुन, सेवा के संदर्भ में बाबा ने क्या कहा। तो ये सातों बात यदि आप रोज चेक करेंगे देखेंगे, और दूसरी बात आपने मेहनत किया है ना, ऐसे तो नहीं निकला, आप जागृत होकर के आप सुनेंगे, एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे, तभी तो ये बात निकलेगी। फिर आप देखेंगे ये सातों बात आप जब भी याद करेंगे सारे दिन में तुरंत, अच्छा आज बाबा ने योग के संदर्भ में क्या कहा, क्या मैं ये योग में ये कर रहा हूं प्रैक्टिस, धारणा में जो बाबा ने कहा वो मैं कर रहा हूं, अपने मतलब पूछते रहो अपने आप से। तो रोज की मुरली से ये सात सूत्र निकालना और अपने आप को चेक करना। और जब भी मुरली सुने, अब देखो मुरली में आता है, बाबा मुरली की शुरुआत में ही एक प्रश्न करते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, तो जब हम आत्म अभिमानी होकर के बैठते हैं तब मुरली का रस मिलता है, और ये फील करें कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे आज्ञा कर रहे हैं, बच्चे ये करना है और ये नहीं करना है। आपको देखो बड़ा आनंद आएगा। मैं कभी से बाबा से जब शांतिवन मिलने जाता हूं तो मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं इस हाल में अकेला बैठा हुआ हूं और बाबा केवल मुझे देख रहा है। भले किसको भी देख रहा हो, आप ही फील करो कितना अच्छा लगेगा, बाबा केवल मुझे। कई बार हम देखते ना वो हमारे हमसे आगे बैठ गया, हम तो बाजू में बैठे हैं, इधर बैठे हैं उधर बैठे, ये नहीं सोचो, ये सोचो इस हाल में मैं अकेला हूं और बाबा केवल मुझे देख रहा है और दृष्टि से भरपूर कर रहा है। देखो कितना आनंद आ जाएगा। अच्छा बाबा दृष्टि दे रहे हैं, बाबा दृष्टि देते देते उधर, लेकिन वो ज्ञान सूर्य है ना, वो किधर भी देखे। हम कई बार अच्छा बाबा हमारी तरफ देखता है तो हम बिल्कुल सजग होकर बैठ जाते हैं, और बाबा उधर देखने लगता है साइड में दृष्टि, हाँ अच्छा बाबा अब उधर देखने लगा, हम थोड़ा सा अलवेले हो जाते हैं। नहीं, आप उस अच्छा बाबा की मुरली भी चल रही है, तो आप सोचना, जिसे मैं रोज परम धाम में याद किया करता था, आज वो मेरे सम्मुख बैठा हुआ है। आज कोई हमें विजन बनाने की, दृश्य इमर्ज करने की जरूरत नहीं। भल हमारे कान तो खुले हैं ना, कानों से तो मुरली जा ही रही है ना, लेकिन उससे जो वाइब्रेशंस लेना, वाइब्रेशंस लेकर अपने आप को भरपूर करना, वो तो कहने का भाव ये है कि जब भी मुरली सुने तो इस फीलिंग के साथ कि बाबा मेरे को, तो कभी जब हम मुरली सुनते हैं और मुरली बाबा की पूरी हो जाती है, फिर बाबा अच्छा डबल विदेशी पार्टियों से मिलने लगते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा, अच्छा बाबा आप डबल विदेशियों से मिल रहे हैं, हमारा तो पूरा हो गया ना। नहीं, किसी से भी मिले, किसी को कोई भी कहे, लेकिन वो मेरे लिए है, ये मुझे करना है। अच्छा, तो पहली समय बड़ी फास्ट गति से हमने 5 बातें के लिए बोला, चलो अच्छा कोई बात नहीं है, 2 बातें हो गई। पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा पाप समान बनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले का योग। दूसरी बात, ब्रह्मा ज्ञान अर्थात मुरली, मुरली का सुख लेना है। अब तीसरी बात, ब्रह्मा पाप समान बनने के लिए ब्रह्मा शब्द से जुड़ा हुआ, और तीसरा शब्द क्या हो सकता है, ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा भोजन ये तो नहीं भूलेगा ना। बाबा के महावाक्य 88 की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि जब तुम योग युक्त होकर भोजन करते हो तो उस भोजन के अंदर विटामिन ए बी सी डी सारे विटामिन, बिल्कुल स्पष्ट बाबा ने कहा, बाबा के शब्दों में बोल रहा हूं, उसमें सारे विटामिन आ जाते हैं। फिर इसके लाइन दूसरा शब्द, बाबा ने कहा कि वो ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन बन जाता है। तीसरी बात इसी के आगे, बाबा ने कहा वो ब्रह्मा भोजन दवा का भी काम करता है तो दुआ का भी काम करता है। देखो, हम सब स्वस्थ रहने के लिए अनेक प्रकार से ढूंढते रहते हैं, कोई डॉक्टर आता उससे पूछते रहते हैं, बाबा ने कितना क्लियर बोला है कि योग युक्त होकर भोजन करने से आप कैसी भी बीमारी खत्म कर सकते हैं। और एक साकार मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे नहीं कि आपके सामने भोजन आया, आप 1 मिनट भोग लगाया, बस इधर उधर बातें करना चालू, वो भी नहीं। बाबा ने कहा एक एक गिट्टी में बाबा को याद करो, अगर एक गिट्टी भी आप बाबा की याद में नहीं करते तो वो गिट्टी माया के मुंह में जाती है, माया खा जाती है, और फिर माया खा करके बलवान बनती है, और बलवान बन करके आपको ही परेशान करती है। तो आप देखो, जो गिट्टी हम बाबा की याद में खाए तो समझो हमने बाबा को स्वीकार कराया, और जो गिट्टी हमने बाबा की याद में नहीं खाए वो माया खाए। अब देखिए, हमारा ज्यादा प्यार किससे, बाबा से या माया से, किससे, बाबा से। ठीक है, तो जैसे जो गिट्टी बाबा की याद में खाएंगे तो समझो बाबा को स्वीकार कराया, और बाबा स्वीकार किया उस चीज को तो हम क्या बनेंगे, शक्तिशाली। तो बाबा से प्यार है ना, तो हर गिट्टी बाबा की याद में स्वीकार करें। तो कई लोग कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, लेकिन हर गिट्टी बाबा की याद में वो सहज, उसकी कोई तरीका बताओ ना, है ना, हम तो भूल जाते हैं, पूरा समय योग युक्त होकर भोजन कैसे हो। तो डॉक्टर लोग बोलते ना कि भोजन करते समय धीरे धीरे करना चाहिए, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। तो एक विधि है कि आपका भोजन भी धीरे धीरे हो जाएगा और पूरा समय योग युक्त, तो आप उसमें 5 स्वरूपों का अभ्यास जोड़ो, एक गिट्टी लो तो पहुंच जाओ अनादि स्वरूप में, जब तक वो गिट्टी आपके चबाओ तब तक अनादि स्वरूप में परम धाम में बाबा को देखते रहो। अच्छा, अब दूसरी गिट्टी उठाया तो कहाँ पहुंचो? आदि स्वरूप में, देव स्वरूप में, वो दुनिया सामने सतयुग दुनिया, देवी देवता बन जाओ। तीसरी गिट्टी उठाओ तो पूज्य स्वरूप, हाँ ये सामने लाओ कि भक्त लोग मुझे भोग स्वीकार करा रहे हैं, ठीक ना, रमणीकता भी हो जाएगी और बाबा की याद भी हो जाएगी। और चौथी गिट्टी उठाओ तो आपको बताओ, मुझे जो बहुत अच्छा लगता है एक चीज कि आप डायमंड हॉल के स्टेज पर पहुंच जाओ, नहीं ठीक है ना, फरिश्ता बन करके आप देखो बाबा कैसे, दादी कैसे बाबा को खिलाते हैं, और कभी कभी बाबा भी दादी को खिलाते, तो दादी के स्थान पर आप अपने आप को देखो कि बाबा, हम बाबा को खिला रहे हैं और बाबा, कोई इसमें तो रोक टोक की बात नहीं है ना, आप हर गिट्टी में, अच्छा बिल्कुल आपकी स्टेज मौन हो जाएगी, बाबा को हम खिला रहे हैं और बाबा हमें खिला रहे हैं। और ध्यान रहे था ना, कोई सामने बैठा और आप बाबा की याद मुझसे मुंह में डाल लो, वो सोचे भाई क्या हो गया इसको, बहुत इसने आ गया, मैं ना वो फील करनी है कि बाबा को हम खिला रहे हैं गिट्टी और बाबा मुझे खिला रहे हैं। अच्छा, और पांचवें, पांचवा स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में, वतन में, हा? बाप दादा के सम्मुख बाबा मुझे खिला रहे हैं। तो पांचों स्वरूपों का अभ्यास भी हो जाएगा और योग युक्त भोजन भी हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि बाबा ने कहा है कि जो योग युक्त होकर के भोजन करते हैं वे मेरे बहादुर बच्चे हैं। योग युक्त होकर भोजन बनाने से और खिलाने से बाबा ने कहा है, किसी के बुद्धि को भी परिवर्तन कर सकते हो, किसी के संस्कारों को महान बना सकते हो, उसके अंदर सद्बुद्धि ला सकते हो। तो तीसरी बात, ब्रह्मा भोजन योग युक्त होकर के बाबा की याद में स्वीकार करें। और चौथी बात, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए ब्रह्मचर्य, पवित्रता की धारणा, संपूर्ण पवित्रता, मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति स्मृति, और पवित्रता है हमारे जीवन में तो कैसे हमें पता चले कि संपूर्ण पवित्रता आ गई? बाबा ने कहा पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर जरा भी दुख की फीलिंग भी आती है तो ये भी क्या है? अपवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा सुख स्वरूप, हमारे मन में सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, रहम की भावना, स्नेह की भावना, कल्याण की भावना, सबको आगे बढ़ाने की भावना, वाचा में मधुरता। बाबा ने कहा ना, आपके एक एक बोल उमंग उत्साह दिलाने वाले, खुशी दिलाने वाले, और ऐसे ही कर्म में सर्व को सुख देने की भावना, संतुष्ट करने की भावना, तो ये सब पवित्रता। इसकी बहुत बड़ी ये डिटेल है, ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं। अब हम पांचवी बात ले लेते हैं। पांचवी बात है, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए ब्रह्माचारी बन करके, ब्रह्मचर्य तो है लेकिन साथ साथ ब्रह्माचारी बन करके रहना। ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, जो संकल्प जो बोल जो कर्म ब्रह्मा बाप के वही हमारे। तो अपने जीवन का ये नियम बना लेना, सिद्धांत बना लेना है कि अब हमें केवल वही करना है जिसके लिए बाबा ने मुझे अपना बनाया है, ठीक है। इसका भी विस्तार आप खुद कर लेना। तो पांच बातें याद रखना, ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए पहली बात क्या सुना? ब्रह्म मुहूर्त। दूसरी बात ब्रह्मा ज्ञान। तीसरी बात ब्रह्मा भोजन। चौथी बात ब्रह्मचर्य। और पांचवी बात ब्रह्माचारी। अगर ये पांच बातें हैं तो कहेंगे सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ऐसे सच्चे ब्राह्मण ही ब्रह्मा बाप समान बनते हैं। ओम शांति।